तो विदेश के भाई बहने SML की ट्रेनिंग कराने आए थे। उस ट्रेनिंग को लेकर उस पाठ्यक्रम को आपने भारत निवासियों के अनुसार मोल्ड किया और उसके द्वारा काफ़ी सेवाएं की कंपनियों में जाकर, जिसके कारण से आप फेमस हुई किस नाम से, SML वाली उषा बहन। फिर आपने अपने ध्यान को फोकस किया हमारे महाकाव्यों पर, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, और उसका आध्यात्मिक मर्म क्या है उसको सबके सामने रखा। और फिर बाबा की मुरलियों में जो बार बार बाबा कहते रहते हैं कि बाबा की एक इच्छा अभी तक बच्चों ने पूरी नहीं की है, कौन सी? ये बात अगर सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तो देखो कितना परिवर्तन आ जाएगा। तो वहाँ आपने अपना ध्यान केंद्रित किया और काफ़ी बड़े बड़े धर्म सम्मेलनों में इस बात को आपने रखा कि गीता का भगवान शिव है, जो सचमुच बड़े बड़े धर्माचार्य भी उससे कन्विंस हो जाते हैं। तो ऐसी हमारी उषा बहन जी, जिनकी ज्ञान और योग में बहुत गहराई है, आज हमारे बीच में हैं। और जैसे अभी हमने गीत सुना, मस्तक सिंहासन पर, बोलो, हाँ, मस्तक सिंहासन पर हम आत्मा हैं, हम राजन बने और शासन करें। तो राजन बनकर शासन करना मतलब कौन सी पावर होना हमारे पास? कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो कैसे इस पावर को हम अपने में ले आए, इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे हमारे दीदी जी, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को जो श्रेष्ठ ज्ञान की निधि दी है, उसे हम अपने जीवन के अंदर अनेक शक्तियों को विकसित करते हैं, अनुभव करते हैं। अष्ट शक्तियां तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कई शक्तियां हमारे अंदर आती है, उसमें से एक शक्ति है ये रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। अक्सर जब ये शब्द सुनते हैं तो इतना तो हम जरूर समझ लेते हैं कि बाबा ने जो रूलिंग करने के लिए कहा, कंट्रोलिंग करने के लिए कहा, स्वयं को, अपनी इंद्रियों को, उसके ऊपर पूरा अधिकार प्राप्त करना है, उसके ऊपर शासन करना है। साथ ही साथ जो कमजोरियां मनुष्य जीवन में आ गई है, वो कमजोरी वापस हमारे जीवन में ना आए, उसको रियलाइज करते हुए उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना, तो ये बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है कि बच्चे अपने कर्मेंद्रिय पर और अपने अंदर जो कमजोरी है उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। लेकिन कई मुरलियों में बाबा और सूक्ष्म स्तर पर भी ले जाते हैं कि जो हमें राज्य अधिकार प्राप्त करना है वो कर्मेंद्रिय के साथ साथ, क्योंकि कर्मेंद्रिय को चलाने वाली भी हमारी सूक्ष्म इंद्रियां है, और वह है मन, बुद्धि और संस्कार, जिसको दूसरे शब्द में शास्त्रों में कहा कि एक है कर्मेंद्रियां, एक है ज्ञानेंद्रिय, तो ज्ञानेंद्रिय के ऊपर भी हमें अधिकार प्राप्त करना है। ज्ञानेंद्रियां उसको कहते हैं कि जो ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, तो मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और स्मृति, इसको कहा जाता ज्ञानेंद्रियां, जो ग्रहण करती है बाहर की चीजों को, अपने अंदर सोख लेती है। तो जिस तरह कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है, तो बाबा जब सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं तो ये ज्ञानेंद्रिय के ऊपर भी हमें अधिकार प्राप्त करना है। उसमें जो विशेष चंचलता या आउट ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाए, वो मन बुद्धि अधिक विचलित हो जाती है, और ये मन बुद्धि के आधार से ही वृत्ति, चित्त वृत्ति और स्मृति ये भी काम करती है। तो इसीलिए इसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये स्व अनुशासन, क्योंकि इसको डिसिप्लिन करना है तो अनुशासन में ले आना है, और जब तक ये स्व अनुशासन नहीं है तब तक हम जीवन के अंदर प्रगति का अनुभव नहीं करते, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन ये स्व अनुशासन जो लाना है, कई बार साकार मुरलियों में बाबा ने ये बात कही है कि बच्चे दुनिया में कई सन्यासी लोग भी अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल लाते हैं, लेकिन वो दवाइयों से लाते हैं, या कई लोग दमन करते हैं। यहां हमें न दमन करना है न दवाइयों का प्रयोग करना है, लेकिन ज्ञान की शक्ति से उसको अनुशासन में लाना है। तो सबसे पहली पावर जो बाबा हम बच्चों को देते हैं कि ज्ञान बल और योग बल, जितना ये ज्ञान बल योग बल हम अपने अंदर धारण करते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं, उतनी हमारे सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जिसके माध्यम से स्थूल इंद्रियां भी कंट्रोल में चलती है। आज दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो लोग अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, है ना? दूसरों पर राज्य करना है, दूसरों को कंट्रोल करना है, वहां तक कि बाबा के बच्चे भी बनने के बाद कई बार कहते हैं, हमारे पास आते हैं भाई बहने तो क्या कहते हैं, हमारे बच्चे को कंट्रोल कैसे करें हम? कभी कभी मन में आता है, आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं जो बच्चों को कंट्रोल कर सकेंगे? जब खुद पर ही कंट्रोल नहीं है, अंकुश नहीं है, तो बच्चे तो बहुत दूर की बात हो गई है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा की जीवन को जब देखते हैं कि बाबा ने कभी भी किसी को भी कहकर सुधारा नहीं, बाबा को जो कहना था मुरली में सुनाते थे, जिसको उसमें से ग्रहण करना होता था उसमें से ग्रहण कर लेते थे। बाबा ने डायरेक्ट कभी किसी बच्चों को तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं कर, इतने सलाह सूचन कभी दिए नहीं। जो आज माँ बाप दुनिया के अंदर अधिकार समझते हैं कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम जैसे सलाह सूचन दे वैसे ही उसको चलना चाहिए, उसी से आप बच्चों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाबा ने बच्चों को कभी भी कोई सलाह सूचन दे करके कंट्रोल नहीं किया। मुरली के अंदर ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ साथ कर्म फिलॉसफी समझाई, और वो कर्म फिलॉसफी के आधार पर जिसको परिवर्तन करना है वो स्वयं अपने आप वो शक्ति विकसित करके परिवर्तन करे। क्योंकि कोई भी इंसान को आप कंट्रोल करते हुए परिवर्तन नहीं कर सकते, कायदा नहीं है। और अगर फिर भी दुनिया में जैसे भय और आतंक आज इतना विकसित क्यों हो रहा है, ताकि दूसरों पर कंट्रोल प्राप्त कर सके, तो हिंसक तरीका अपनाया। लेकिन वह हिंसक तरीके से कितनी देर तक किसी को कंट्रोल कर सकेंगे, है ना? नहीं कर सकते हैं। भय के माध्यम से किसी को कंट्रोल नहीं किया जाता है, और इसीलिए बाबा ने कभी भी भय का सहारा नहीं लिया। जैसे शास्त्र के अंदर भी कई लोग भय दिखाते हैं, अगर ऐसा कर्म नहीं किया ना तो जानवर बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, गरम गरम कढ़ाई में तुम्हें तला जाएगा, कितना भय दिखाते हैं, है ना? और भयभीत होकर के कितना समय चलाया। आज अगर किसी बच्चे को आप कहो कि अगर तुम ऐसा नहीं करेंगे तो गरम गरम कढ़ाई में तुम्हें डाला जाएगा, भगवान ऐसी सजा देंगे, भगवान का भय दिखाना अयोग्य था। और इसीलिए जब ऐसी बातें अगर करते हैं आज के बच्चों को, तो बच्चे कहते फिर तो हमें उस भगवान को मानना ही नहीं है। जो भगवान अगर हमें गरम गरम कढ़ाई में तलने वाला हो तो हम उसको क्यों माने? हम उस भगवान को मानेंगे जो प्रेम से हमें प्यार करता हो। बाबा ने इसीलिए प्रेम की शक्ति को यूज किया। तो कभी भी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर न भय दिखा करके कर सकते हैं, न आतंक और हिंसा का माध्यम लेकर के कर सकते हैं, या न क्रोध और अहंकार की भावना के आधार पर किसी को आप अपना हम दिखाओ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ ये कर दूंगा ना, वो कर दूंगा ना, कर सकता हूं, है ना? तो दुनिया में भी आज लोग फिर उस चैलेंज को स्वीकार कर देते हैं और क्या कहते हैं, जो मन में कर लो, जो होता है कर लो, अब तो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ये कहते हैं ना, है? था ये कर लो, बस हमें जो ये केटलू करी सके, है ना? तो हम भी देखेंगे तुम क्या कर सकता है। ये आज का रिस्पॉन्स हो गया। इसीलिए बाबा ने कभी भी न अपना अधिकार अहंकार दिखाया, बाबा ने न कभी कोई भय दिखाया, न धर्मराज का भी भय नहीं दिखाया बाबा ने। बाबा ने हमेशा प्राप्ति की बातें सुनाई, प्रेम से और प्राप्ति की बातें, कि बच्चे ये पॉजिटिव बातें सुनाई, कभी नेगेटिव का सहारा बाबा ने नहीं लिया। तुम ये करेंगे तो देखो बच्चे तुम्हें ये प्राप्ति होगी, ऐसी प्राप्ति होगी, तुम कितना उच्च पद को प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन के अंदर इस जीवन में भी तुम्हारे अंदर क्या क्या खजाना विकसित कर सकते हो, कितनी शक्ति अपने अंदर अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा ने हमेशा पॉजिटिव बातें लेकर के बच्चों को समझाया। कभी कभी निर्मल शांता दादी अनुभव सुनाती थी कि कभी कभी बाबा जो है ना हमको डांट लगा देता था कि बच्ची तुम्हें ऐसा थोड़ी करना चाहिए, सबके बीच में, क्लास के बीच में कभी कभी बाबा जो है सख्त हो जाता था निर्मल और निर्मल शांता दादी कहती हमको पता ही नहीं कि किस बात क्या हुआ, ये डांट किस लिए पड़ रही है। तो फिर बाहर आकर के निर्मल शांता दादी बाबा को घुमाने ले जाती थी, गाड़ी आती थी चलाना तो बाबा को गाड़ी में घुमाने ले जाती थी। फिर रास्ते में दादी पूछती थी बाबा को कि आज क्लास के बीच में आपने मेरे को किस बात के लिए डांटा। तो तब बाबा कहता था कि दुनिया में कहावत है कि बेटी को डांटो तो बहू सीखे। तो तेरी कोई गलती नहीं थी, गलती दूसरे ने किया था, लेकिन उसको बाबा डायरेक्ट नहीं कह सकता है, फीलिंग आ गई और चली गई है ना, बाबा का हाथ छोड़ दिया तो फिर बाबा तो निमित्त बन जाएगा ना। तो इसलिए दुनिया में भी एक कहावत है कि बेटी को कहो तो बहू सीख जाएगी। तो इस तरह से ये बच्चों को अगर कुछ सिखाना है, उनको डांट लगाएंगे, फीलिंग आ जाएंगी, चले जाएंगे तो बाबा का हाथ छोड़ देंगे, तो उसके लिए जिम्मेवार मैं हो जाऊंगा, इसलिए मैंने तुझे कह दिया ताकि वो सीख जाएगी, है ना। तो निर्मल शांता दादी कहती है फिर तो है ना, अगले कल्प में मैं बाबा को कहूंगी, शिव बाबा को, मुझे आपकी बेटी बनाए ही नहीं, बिना कारण के मुझे डांट खानी पड़ती है, तो मेरे को दूसरे कल्प में तो आपकी बेटी बनना ही नहीं है। तो बाबा भी हंसी कर देता था और हंसी में सारी बात को उड़ा देता था। कहने का भावार्थ मेरा यह कि बाबा ने कभी भी कोई भी बात के लिए बच्चों को कभी डांटा नहीं। वहां तक कि गुलजार दादी हमेशा बताती थी कि जो माताएं बच्चों को संभालती थी, छोटे बच्चों की हॉस्टल होती थी जिसमें बाबा माताओं को निमित्त बनाया था उन बच्चों को संभालने के लिए, तो बाबा हमेशा उन माताओं को भी कहता था ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, इनकी बहुत अच्छी संभाल करना है, उनको कभी डांटना नहीं, इनकी पूजा करना है हमें, ये पवित्र है। तो बाबा छोटे बच्चों को भी इतना महत्व देते थे और इतना प्यार करते थे कि ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, और इसीलिए वो बच्चों के अंदर जिस तरह का संस्कार बाबा ने डालना चाहा, वो संस्कार बाबा डाल सके, है ना। आज प्रैक्टिकल गुलजार दादी को जब देखते हैं, उसी हॉस्टल से जब दादी आई, तो चाहे गुलजार दादी हो, चाहे ईशु दादी हो, चाहे कुंज दादी हो, ये सारी दादियां जो थी उसी छोटे बच्चों की हॉस्टल में थे, जिनको बाबा कहते थे ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, और इसीलिए उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कहने का भावार्थ के बाबा ने कभी उनको डांटने नहीं दिया, वहां तक कि लौकिक में ये संस्कार बाबा का लौकिक से था, खाली शिव बाबा आने के बाद ही ये संस्कार बाबा का हो गया ऐसा नहीं कहेंगे, लौकिक से बाबा का ये संस्कार था कि जब एक बार बच्चे घर में तूफान मचा रहे थे, खूब दौड़ा दौड़ी करके तूफान कर रहे थे, खेल रहे थे, चीजें इधर उधर हो रही थी, तो यशोदा माता किचन में रोटी बना रही थी, वहीं भी घूम घाम करके दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, बच्चे हैं दौड़ा दौड़ी तो करेंगे। तो बाबा का घर जो था ना ऐसे गाढ़ा सिस्टम था, तो किचन जो लास्ट में था, तो वहां यशोदा माता ने बच्चों को खाली बेलन दिखाया, अब मारूंगी बोले, अब तूफान मस्ती किया तो, और बाबा आगे से घर में प्रवेश कर रहे थे लौकिक में, तो गाढ़ा सिस्टम जैसे था घर, तो जैसे ही अंदर घुस रहे थे, बाबा ने देखा कि यशोदा माता ने बेलन दिखाया। बाबा ने बच्चों को बुलाया, चलो बाबा घुमाने ले जाता है आपको, और सभी को गाड़ी में बिठाया और फिर कहा मैं आता हूं एक मिनट। और आकर के किचन में यशोदा माता को कहा, आज बेलन दिखाया सो दिखाया, आज के बाद बेलन कभी नहीं दिखाना। तो यशोदा माता ने कहा कि बच्चे बहुत तूफान कर रहे हैं, आपको क्या मालूम। तो बाबा ने कहा कि देखो, आज तुमने बेलन दिखाया, कल वो एक दूसरे को दिखाएंगे, तो ये संस्कार कौन डाल रहा है। तो बच्चों के अंदर ऐसे हिंसा के संस्कार हमें कभी डालना नहीं है। प्यार से समझाओ, जो आज की दुनिया के अंदर छोटी बात के लिए भी बच्चों को थप्पड़ मारना तो कॉमन बात हो गई, तूफान कर रहे मार दिया है ना, या कुछ भी गुस्से में आकर कर दिया, बाद में जो है होश आता है कि अरे मैंने क्या किया। वो एक सत्य कहानी किसी ने, सत्य घटना मुझे भेजी, तो कहा कि एक पिता नई गाड़ी लेकर के आया, तो बच्चा खेल रहा था, वो छोटी गाड़ियां नहीं होती है, उससे खेल रहा था, उसको छोटी कार दिया होगा, तो खेलते खेलते जैसे घिस गए उसके ये पहिए आदि जो थे। तो जब नई गाड़ी पिता साफ कर रहा था उसको अच्छे से, तो बच्चा अपनी वो गाड़ी लेके सोचा उसके ऊपर घुमाऊ मैं। अब ऊपर घुमाए तो स्क्रैचेस गए, गिर गए। अब स्क्रैचेस आए तो वो पिता इतना गुस्से में आकर के उसने जो मारा इसके दोनों हाथ लेकर के उसको, मना पता नहीं क्या किस पर घिसा ऐसा जोर से, जो उसके नाखून में से इतना खून निकला उस बच्चे का, और हड्डियां उसकी टूट गई समझो, इतना मारा उसको कि बात मत पूछो। और जो है उसको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उस बच्चे को। रात को वो बाप को पश्चाताप होने लगा, खूब रोया बच्चे के आगे कि मुझे माफ कर देना, मैंने क्या कर दिया तुझे, है ना, मैंने क्या कर दिया, मैं मेरे को तू माफ कर देना। तो उस समय वो बच्चा पिता को कहता है कि कोई बात नहीं, आप रो नहीं, आप पश्चाताप नहीं करो, मैंने सीख लिया अभी कि अब आगे से कभी मैं आपकी गाड़ी को खराब नहीं करूंगा, समझ लिया। कहने का भावार्थ यह है कि आज मनुष्य गुस्से में आकर के क्या नहीं कर देता, बच्चों को कंट्रोल करना चाहता है। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है, खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता है, खुद के अंदर की जो आसक्ति है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जब खुद पर ही राज्य नहीं है और बच्चों पर राज्य करने चले, दूसरों को कंट्रोल करने चले। बाबा ने हमें यह सिखाया कि किसी को भी अगर सिखाना है तो खाली प्यार से नहीं, लेकिन सम्मान दे करके। जो बाबा कहते थे ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, अर्थात वो बच्चों में भी ये संस्कार के भाई उनको भी ये स्वमान जागृत होता था कि हम चैतन्य ठाकुर है, तो हमारे से ये कर्म नहीं होना चाहिए। अपने आप उनको आता था, ठाकुर ये काम थोड़ी करेंगे, जो चैतन्य देवता होंगे वो ऐसा काम थोड़ी करेंगे। तो आप बच्चों के अंदर इतना ऊंची स्वमान की जागृति करो, जो उस स्वमान में आकर के वो अपने आप वो संस्कार को जागृत कर सके। तो इसीलिए प्यार सम्मान जब दिया जाता है, तब आप खुद के गुस्से को या खुद के अंदर जो कमजोरियां हैं उसको तो कंट्रोल करेंगे ही, अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य कर सकेंगे और साथ ही साथ दूसरों को जो आप सिखाना चाहते हैं वो भी सिखा सकते हैं। सम्मान देना है ना, और इसीलिए बाबा का हमेशा यह स्लोगन था खुद के लिए कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। और इसीलिए बाबा ने करके सिखाया, कह के नहीं सिखाया, करके सिखाया। हर चीज के लिए पहले खुद किया। कभी बाबा धोबी घाट में पहुंच जाता था और धोबी घाट में खुद बाबा कपड़े को जैसे सटके मारते हुए उनके अंदर उमंग उत्साह भर देता था। कभी बाबा अनाज सफाई में पहुंच जाता था, अनाज खुद साफ करने बैठ जाते थे, सारे बच्चे देखते थे, अरे बाबा मम्मा अनाज साफ कर रहे, बाबा ने हम भी करे चले जाते थे, है ना। तो बाबा ने कोई भी कार्य किसी को स्थूल रीति से न ऑर्डर दिया, न राज चलाया अपना, न अधिकार दिखाया, न उनको अंकुश में लाना चाहा। लेकिन बाबा ने हर प्रकार की स्वतंत्रता दी खुद को समझते हुए, खुद को चेंज करने के लिए, खुद को परिवर्तन करने के लिए, और इतना सम्मान दिया और उनके स्वमान को जागृत किया कि उस स्वमान में आकर के वो अपने आप स्वयं को भी कंट्रोल करने लगे कि ये कार्य करेंगे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाबा ने कभी नहीं कहा ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सम्मान दिया जो उनको अपने आप में एक रियलाइजेशन आने लगा ये काम करेंगे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अथॉरिटी होने के बावजूद भी अथॉरिटी को कभी यूज नहीं किया। दूसरा, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर यज्ञ के अंदर जो बाबा ने चलाया कि कभी भी आपको अगर दूसरों को कंट्रोल करना है तो पहले खुद त्याग करना जरूरी है। बाबा ने जब त्याग किया, हर बात का त्याग किया, तो अपने आप लोगों ने सुनना शुरू किया बाबा को, है ना। बाबा कभी भी ये छोटे से कमरे में रहे जहां अंदर बाथरूम भी नहीं, बाबा बाहर जाते थे स्नान करने के लिए भी बाबा बाहर होते थे। बाबा का कमरा जो था छोटा सा, ये तो अभी बढ़ाया, पीछे वाला जो हिस्सा है वो बढ़ाया, बाबा का तो उतना ही कमरा था, और उसी कमरे में बाबा सारा समय रहा। जबकि ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, इधर हिस्ट्री हॉल के आसपास जो नए कमरे बने थे, बाबा कभी उस कमरे में नहीं गया। बाबा ने वो कमरा बच्चों के लिए रखा। बाबा की ये त्याग की भावना को देख करके हर एक के मन के अंदर खुद भी त्याग करने का संकल्प आता था कि हम भी करें, बाबा कर रहे हैं, बाबा यूज नहीं करते हैं। तो बाबा ने खुद त्याग किया तो वो प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है और स्वतः सभी कंट्रोलिंग पावर में माना खुद के ऊपर अंकुश ले आना सीख जाते हैं। अगर बाबा ही गुस्सा करे, बाबा ही ये करे, बाबा कहे हर चीज मैं यूज करूं, तो बच्चों के अंदर भी कभी भी ये त्याग की भावना नहीं आती थी, है ना। कभी भी बाबा ये नहीं कह सकता था कि भाई बच्चे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। बाबा ने हर चीज प्रैक्टिकल खुद किया और ये त्याग की शक्ति भी बाबा के अंदर कैसे आई, तो त्याग की शक्ति आई बेहद के वैराग्य से कि ये पुरानी दुनिया में नया कुछ है ही नहीं। ये बाबा की भावना थी, पुरानी दुनिया में हर चीज पुरानी है, मकान भले नया बनाया हो लेकिन है तो पुरानी दुनिया, तो एक वैराग्य, और उस वैराग्य के आधार पर बाबा ने त्याग किया और तब जाकर के बच्चों को सिखाया। आज की दुनिया के अंदर कई माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और उनको त्याग सिखाते हैं, तुम्हें टीवी नहीं देखना है, एग्जाम आई ना टीवी नहीं देखना है, और खुद देख रहे हैं। अब वो बच्चे कम कहेंगे तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई कर टीवी देखेगा तेरा मार्क्स पीछे आ जाएंगे, तुम्हें टीवी नहीं देखना है, और खुद टीवी देख रहे हैं। अब बच्चा सुनेगा नहीं? तो इसीलिए कहा कि जब खुद त्याग करते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए तो माँ बाप को भी टीवी का त्याग करना पड़ता है, तब बच्चे सीखते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए रोब और क्रोध का प्रयोग करने के बजाय जितना त्याग के भावना से वैराग्य की भावना को यूज करते हैं तो खुद भी कंट्रोल रहते, खुद में भी संयम आ जाता है और शक्ति आती है। जिस तरह से आज की दुनिया के अंदर जितना व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखता है उतना खुद के अंदर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर को सहज विकसित कर सकता है। बार बार अगर अनेक इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, अनेक तृष्णाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तो जहां खुद के ऊपर ही संयम नहीं है तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर तो बहुत दूर की बात है। और यही संयम को विकसित करने के लिए दुनिया के अंदर व्रत का जो ये चला के भाई आज फलाने चीज का व्रत है, आज फलानी चीज का व्रत, ताकि एक दिन का भी व्रत लेंगे एक दिन में भी व्यक्ति अपने आप को देख सकता है कि मेरे अंदर संयम कितना आया, और उस संयम में आकर के हमने उसको, उस इंद्रिय को कितना जीता है कि मन भी हमारा उस तरफ गया या नहीं गया, ये देख सकते हैं। अगर मन बार बार जाता है भोजन के तरह, एक दिन का व्रत में भी उसका मन बार बार गया तो वो समझ जाता है कि मेरे में इतनी भी शक्ति नहीं है जो मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं। तो लोगों ने जो उपवास और ये व्रत लिए भक्ति मार्ग में, चाहे एक साल के लिए लिया या कुछ दिनों के लिए जब तक वो त्योहार चलता है उतने दिन के लिए लिया कि भाई नवरात्रि के 9 दिन का ये व्रत रखना है या ये उपवास रखने हैं, तो उस 9 दिन का भी उपवास और व्रत करने के बाद भी उनके अंदर इतना संयम आ जाता था, शक्ति आ जाती है। तो बाबा ने भी हमें ये विकारों की परहेज क्यों दिया है कि बच्चे ये व्रत लो, इस व्रत में पक्के रहो, क्योंकि व्रत लेंगे तो वृत्ति कंट्रोल्ड होगी। व्रत नहीं है तो वृत्ति कंट्रोल में नहीं आती है, और वृत्ति कंट्रोल में नहीं है तो चित्त एकाग्र होना चाहिए, उसके बदले भटकता रहेगा, चित्त की एकाग्रता नहीं बनेगी, संकल्पों में तूफान आरंभ हो जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी अगर कोई चीज के लिए व्रत लिया, उपवास लिया, नियम लिया, तो वो नियम से उनके अंदर संयम बढ़ता है। बाबा ने भी इसीलिए हम बच्चों के लिए नियम दिए, कड़े नियम लगे कईयों के, वहां तक कि शुरू शुरू में जब बाबा हैदराबाद में थे तो वहां लोग आकर कहते थे बाबा को कि बाबा आपका ज्ञान इतना ऊंचा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आप ये नियम निकाल लो फिर देखो कैसे भीड़ मच जाएगी। बाबा ने कहा मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो स्वर्ग के राज्य अधिकारी चाहिए, स्वर्ग में चलने वाले चाहिए लोग, मुझे भीड़ थोड़ी चाहिए। और इसीलिए बाबा ने कभी नियमों को लेकर, मर्यादाओं को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि बच्चे ये तो पालन करना ही होगा, है ना। लेकिन उसमें भी बाबा ने हमेशा ज्ञान सुनना है तो ये नियम धारणा मर्यादाएं हैं, अगर नहीं कर सकते तो नहीं आओ। उसमें भी बाबा ने किसी पर जबरदस्ती नहीं किया। और देखा गया कि जैसे जैसे वो नियम मर्यादा, क्योंकि समय अनुसार बाबा ने नियम मर्यादा ही दी है, वर्तमान समय की मांग है, और इसीलिए ये नियम मर्यादा कितना सेफ रखती है हमें, और हमारे अपने ऊपर कितना कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, ये स्पष्ट किया। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया मुझे कि वो एक कंपनी में मैनेजर था, समझो। तो जैसे सब अलग अलग जगह शहरों में मैनेजरों को रखा होता है कंपनी वालों ने, तो जब उनकी मीटिंग होती है तो डायरेक्टर लोग जो है सारे मैनेजरों को बुलाते हैं, तो साल में 2-3 बार मीटिंग में उसको जाना पड़ता था। अब बाबा का पक्का बच्चा, तो पक्का बच्चा होने के कारण जो है वह मीटिंग में जरूर जाता था, लेकिन अपना टिफिन लेके जाता था, वहां का खाता नहीं था, है ना, लसन प्याज वाला होगा नहीं। बाबा की मर्यादा जो है उस मर्यादा को पालन करना है, और इसीलिए ना वहां का खाता था, ना वहां की चाय कॉफी लेता था, अपना टिफिन लेके जाता था, चाय कॉफी तो पीता ही नहीं था, तो वो पीने का सवाल ही नहीं था उसका, और फिर आता था। एक बार ऐसा हुआ कि कोई पैसे का बहुत बड़ा गफला हो गया, तो सारा इल्जाम इस भाई के ऊपर आया कि इसने बहुत बड़ा गफला किया है, इसने ऐसे पैसे की हेरा फेरी की है, बहुत मना उसके ऊपर इल्जाम आया। और उसने कहा, मेरे पास अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं, तो जब सारे मेरे ऊपर बरसने लगे, वहां तक के टॉप मैनेजमेंट वाले भी कि भाई इसने किया है, इसने सच्चाई से हिसाब नहीं रखा है, ऐसे करके बहुत बड़ा इल्जाम आया। तो जो कंपनी का मालिक था, मालिक ने कहा कि ये व्यक्ति के ऊपर भले आप इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति यहां की चाय नहीं पीता है, जो यहां का खाना नहीं खाता है, वो पैसा क्या खाएगा। तो कहा ये बाबा की जो धारणा थी, उस धारणा ने मुझे बचाया, ये नियम ने मुझे बचाया कि मुझे अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो मालिक खुद कहा कि ये यहां का खाना नहीं खाता है तो पैसा क्या खाएगा। ये व्यक्ति इतना संयम वाला है कि ये कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। तो कहा उनका विश्वास देख करके मैं बाबा को थैंक्स किया कि बाबा आज ये नियम मर्यादा, बोले नहीं तो लोग गुस्से में आ जाए अगर झूठा इल्जाम उनके ऊपर, तो मेरे मुझे न क्रोध करना पड़ा, न मुझे अपने आप को सिद्ध करने के लिए लड़ना पड़ा, न मुझे बाबा के ये नियम मर्यादा ने मुझे इतना बचाया कि मुझे अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता न पड़ी। तो सेल्फ रूल, स्व अनुशासन, स्वयं के ऊपर अधिकार, जिसके कारण उसने कहा जब क्रोध नहीं आता है इसको, अहंकार नहीं दिखाता है, किस व्यवहार कुशलता ही उसकी बताते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता है। तो बाबा के नियम मर्यादा हमारे अंदर वो शक्ति को जागृत करता है, और उस शक्ति को जागृत करते हुए हर रीति से हम सेफ हो जाते हैं, बाबा हमें सेफ करता है। कोई व्यक्ति का सपोर्ट लेना भी नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि नियम मर्यादा का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है ना। तो इसीलिए जो है प्यार से, त्याग से, सम्मान दे करके, बेहद की वैराग्य वृत्ति को लेकर के और नियम मर्यादा जो बाबा ने दी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है, जो हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करता है, जो स्व अनुशासन या सेल्फ कंट्रोल हर बात में हमारा सहज हो सकता है। इन्हीं धारणाओं के आधार पर ये प्रैक्टिकल है जीवन के अंदर। बाकी अगर ये धारणाएं नहीं है तो क्रोध भी आएगा, अहंकार भी आएगा, लोभ भी आएगा, शक्ति भी नहीं होंगी और बहनों को छोटी सी छोटी छोटी बातों में रोना भी आएगा, फीलिंग भी आएगी, मूड ऑफ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, एक कमजोरी के शिकार हो जाएंगे। लेकिन जब इन शक्तियों के आधार से हम अपने अंदर स्व अनुशासन लाते हैं तो आपको छोटी छोटी बातों में न फीलिंग आएगी, न रूसना रोना कुछ भी नहीं होगा, है ना? शक्ति इसको कहा जाता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार जो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के लिए जोर देते हैं, क्योंकि अंतिम समय ये शक्ति हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। अंतिम दृश्य जो सामने आएंगे, उन दृश्य को देखते हुए अगर हमारा स्व के ऊपर अनुशासन नहीं है, स्वयं के ऊपर संयम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कमजोरियां हमें शिकार बनाती रहेगी। हम साक्षी दृष्टा होकर के नहीं रह सकते। तो इसीलिए स्व अनुशासन का मतलब ही है कि दमन से हमें अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन समझ से, ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान बल और योग बल से अपने अंदर वो शक्ति को विकसित करते हुए सेल्फ कंट्रोल करेंगे, तो आपको देख करके आपके परिवार के अंदर भी वातावरण शुद्ध होगा। छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि आज अगर किसी घर में एक व्यक्ति शराब पीने वाला आ जाए, आदत लग जाए उसकी, संग के रंग में आकर के अगर ये आदत लग गई, तो सारे घर का वातावरण कैसा कर देगा? लड़ाई झगड़ा, अशांत एकदम, हाँ, कितना हो जाता है। एक व्यक्ति नेगेटिव आदत के शिकार हुआ तो घर का पूरा वातावरण ये हो जाए, तो एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव हो जाता है व्रत लेकर के, स्वयं का अनुशासन करते हुए, तो सारे घर का वातावरण नहीं होगा, बदल नहीं जाएगा। इसलिए जो बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बार, एक बार यहां मीडिया वाले आए थे, तो मीडिया वाले आए थे तो कहा कि एक व्यक्ति के बदलने से क्या होगा, है ना? तो बहुत लोगों से उसने डिस्कशन किया, बहुत लोगों से, हर एक ने कहा कि नहीं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जरूर होता है। तो जब बहुत लोगों ने कहा, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। लास्ट में जो है दादी जी से मिलने आए, प्रकाशमणि दादी थे उस, तो प्रकाशमणि दादी से मिलने आए, तो हम लोगों ने दादी को बताया था कि दादी, ये पत्रकार जो है हर एक के पास जाकर के यही एक सवाल कर रहा है कि स्व परिवर्तन, एक व्यक्ति के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा? आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा? दिनों दिन विश्व तो बिगड़ती हालत में जा रहा है, कहां सुधर रहा है? तो ये स्लोगन आपका सही नहीं है। तो दादी जी को मालूम था कि भाई ये, तो लास्ट में वो लास्ट में आया दादी जी के पास मिलने के लिए। जब सारे निकल गए, उसने दादी जी को यही सवाल पूछा। दादी जी सौगात दे रहे थे उस समय, सभी को सौगात दी, डायरी पेन अपनी तो होती है। तो दादी को जब उसने वही सवाल पूछा तो दादी मुस्कुराई कहा मुझे पता चला आपने सबसे ये सवाल पूछा है, अब मैं इसका जवाब आपको नहीं देंगी, लेकिन आपको ये डायरी सौगात दे रही हूं, और डायरी का कोई भी पन्ना खोलो बाबा का जवाब मिल जाएगा आपको, है ना। बाबा क्या जवाब देता है देखो। तो जैसे ही उसने कोई भी पन्ना खोला, तो खोलते ही चार स्लोगन, 200 पेज की डायरी माना 400 स्लोगन तो हो ही जाते हैं, है ना, दो दो स्लोगन एक एक पेज पर होता है तो 400 स्लोगन तो होता ही है। तो जैसे ही उसने ऐसे डायरी खोला, कोई भी पन्ना खोला, तो उस पन्ने पर आया स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जैसे ही ये स्लोगन आया तो दादी ने कहा देखो बाबा ने जवाब दे दिया आपको कि यही विधि है विश्व परिवर्तन की और कोई विधि नहीं है। तो वो दादी को देखे, फिर हम लोग बैठे थे, हम लोगों को देखे, फिर कहता है दादी को आपने कोई जादू किया। वो जैसे जादूगर लोग नहीं होते हैं कि भाई आपके मन में क्या बात चल रही वही लिखत में पहले से दिखा देते हैं। तो कहा आपने जरूर कोई जादू किया, आप जादू जानती है। दादी ने कहा देखो मैंने सवाल आपका, डायरी आपके हाथ में, मैंने खोल करके तो नहीं दिखाया जो मैं बताऊं आपको क्या ये, और 400 में से कोई भी आ सकता था और कोई नहीं आया, और आपने जो खोला वही आया, तो ये तो बाबा की कमाल है ना, यही तो बाबा का जवाब है आपके लिए। तो इसीलिए इस बात को समझ जाओ, और फिर ऊपर में जो स्लोगन था स्व परिवर्तन, नीचे में विधि बताई हुई थी। हर बात में विधि तो होती ही है। तो बाबा के कोई भी आप देखो वरदान जो मिलता है हर रोज मुरली के बाद, उस मुरली के अंदर जो वरदान होता है, वरदान के साथ उसकी विधि होती है ना, विधि होती है बाबा के। जैसे दो चार दिन पहले की मुरली के अंदर वरदान था कि आप किसी को पहले आप करेंगे तो वो पहले आप करेगा, आप किसी को कहेंगे भाई यहां नहीं बैठना है तो वो पहले बैठेगा, लेकिन आप कहें कि आप पहले बैठो तो कहेंगे नहीं आप पहले बैठो, है ना, तरीका है। तो बाबा हमें तरीका विधि भी बताता है। तो इसी तरह से विधि भी मिल गई उसको, तो कहा अब मैं मानता हूं कि हाँ बाबा ये कार्य जरूर करेगा और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जरूर होगा। तो कहने का भावार्थ यही है कि बाबा कहते हैं किसी को आप कह के नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान बाबा ने इस तरह से दिया हुआ है जिस ज्ञान की शक्ति से वो अपने आप में स्वयं के ऊपर अंकुश ले आता है, और जितना आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उतना उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल या रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर किसको कहा जाता है, ये प्रैक्टिकल की बातें। अच्छा, ओम शांति।